السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا کے حالات ہمیں کمپل کر رہے ہیں، وادار کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مولا کو بلائیں، ہم اپنی تیاری کریں، چلے دل کی گہرائی سے پکارے ان کو جو حلال مشکلات ہیں، اور یہی ہیں جو انسانی اقدار کو بدلنے والے ہیں. قسمت بھی انسان کو انشاءاللہ گلوب میں پیس اور ہارمنی ہوگی، عدل و داد ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعہ وفی کل ساعہ ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد، فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربنا. عزیزان گرامی، ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے تفسیر قرآن. ہم نے گزشتہ ہفتے سے جو اس موضوع سے متعلق جو سورہ چنا ہے وہ سورہ توحید، اور سورہ توحید کا دوسرا نام ہے سورہ اخلاص. توحید یعنی مونوتھزم ہے، اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وحدانیت سے متعلق ہے. اخلاص یعنی پیوریٹی سنسیئرٹی کو کہتے ہیں. ہم نے گزشتہ یہ بحث کی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے وغیرہ، تفصیل سے پورا یہ جو گزشتہ گزرا ہے وہ بتا چکے ہیں. آج ہم ڈائریکٹ تفسیر پر آ رہے ہیں. جن لوگوں نے وہ نہیں سنا ہے، اس کی ورچوز کیا ہیں، ان کی برکتیں کیا ہیں وغیرہ، وہ لوگ جو ہیں اپنے آرکیوز میں اہل بیت ٹی وی کے دیکھ سکتے ہیں، جو یوٹیوب میں بھی موجود ہیں. برادران عزیز، اسلام کا سب سے اہم بنیادی مسئلہ توحید ہے. یعنی اول الدین، مولانا المومنین نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، دین کا پہلا پایا، دین کا پہلا زینہ جو ہے معرفت پروردگار. اور معرفت پروردگار کے لیے سورس قرآن سے بہتر کوئی سورس نہیں، حتیٰ پورے شریعت کے لیے قرآن سے بہتر کوئی سورس نہیں، بلکہ قرآن ہی اہم سورس ہے. توحید اور اخلاص سے، پروردگار سے متعلق یہ خوبصورت سورہ ہے، جس میں تمام عقائد باطنیہ کی، عقائد جو باطن عقیدے ہیں، ان کو ڈینے کیا گیا ہے. اور وہ باطن عقیدے خود اپنے والوں میں بھی ہیں جو آج کل ہیں، پہلے بھی تھے اور اس سے پہلے بھی رہا کرتے تھے، غیر میں جو غیر مسلم ہیں، غیر دینی ہیں. ये सूरा जो है शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा अल्लाह के नाम से, मदद अल्लाह की जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीली तफसीर जो है सूरह अलहम के सिलसिले में हो चुकी है, और ये भी बताया जा चुका है कि सूरह हर सूरह का जुज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में भी उसका वजूद है, सिवाय सूरह तौबा के, सूरह बरात जिसको कहते हैं, नौवां सूरह है, नाइन्थ चैप्टर, उसमें बिस्मिल्लाह नहीं। उसकी वजूहत जो है, चूंकि कुफार से बरात का मसला है, तो उसमें रहमानियत परवरदिगार का तस्करा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद ये शुरू हो रहा है, कुल कह दो। कह दो कहना खुद जो है ये कमांडल फ्रेज है। कह दो के माने, ए रसूल वाजह कर दो, ओपन कर दो, जाहिर कर दो, इब्रास कर दो, यानी जो चीज छुपी हुई बात है उसको मैनिफेस्ट कर दो, कुल के माने। और ये कुल जो है, चूंकि अरबी जानने वाला ये कह सकता है कि अल्लाह ने कुल कहा है, सरकार तो अरबी जानते थे, सरकार को कहना चाहिए था अकूल अल्लाह अहद, अल्लाह ने कहा कुल, कह दो तुम ऐ रसूल, सरकार को कहना चाहिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह एक, नहीं कर सकते आप। जहाँ पर भी कुल कहा अल्लाह ने वो कुल ही होगा, जहाँ बल्लिग कहा बल्लिग ही होगा, अल्लाह के कलाम में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। उसकी वजह भी है, उसका फलसफा भी है, उसके निकात भी मौजूद हैं। जैसे यानी हर मुसलमान जैसे वो इस्लाम को कबूल करता है, उसका भी फर्ज है कि वो इब्रास करे, जाहिर करे दूसरे को। अगर ये मैकेनिज्म फैलेगा तो सारा वर्ल्ड जो है कुल कुल अल्लाह ही की वहदानियत को मानने के लिए तैयार होगा। एक फलसफा ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि चूंकि कुफ्फार कुरैश कहते थे कि हमारा गॉड, हमारे परवरदिगार, हमारा खुदा वगैरह, ये बुत हैं वगैरह हैं, अपना तौसीफ करते थे, और सरकार के पास कुफार कुरैश आए और सरकार ने ऐलान कर दिया था कि मैं नबी भेजा गया अल्लाह की तरफ से हूँ, और वहदानियत से मुतालिक सरकार ने इतनी ताकीद की थी कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, प्रॉस्पेरियस हो जाओगे। अब जाहिर सी बात है कि जब उस तरह की जात का तारुफ करवाया जा रहा है, तो जिस तरह से वो कहते थे ये हमारे खुदा हैं, तुम्हारे खुदा कैसे हैं, तुम्हारा अल्लाह कैसा है, तुम्हारा परवरदिगार कैसा है, उसको भी डिस्क्राइब करो, तो सरकार चूंकि अपनी तरफ से कहा नहीं करते थे, हमेशा से हुक्म परवरदिगार का इंतजार किया करते थे। हम तुम्हें परवरदिगार ये आया सूरह को लेकर के, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूं, और उनसे कह दो कि कुल वल्लाहु अहद। ये इशारा जो हुआ जो है, प्रोनाउन जिसको कहते हैं, इसमें इशारा जिसको कहते हैं, इशारा जमीर जिसको कहते हैं, जमीर वाहिद है ये, एक नंबर वन। जमीर वाहिद गायब है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन है, इसकी भी खसूसियत है। यानी हुआ साबित कर रहा है इस बात को कि ज़ाते परवरदिगार आँखों से ही दूर नहीं है, बल्कि इंसान के फहम और इदराक से भी दूर है। इंसान समझ नहीं सकता उसकी ज़ात को। हुवल्लाहु अहद, कह दो ऐ रसूल वो हुआ है, हुआ यानी वो है, वो से दैट ही इज, ये जो वो कहना इस बात की दलील है कि उस ज़ात को इदराकात में ला करके समोया नहीं जा सकता। ये लोग कह रहे थे देखो ये खुदा हमारे हैं, ये खुदा हमारे हैं, ये बुत खुदा हमारे, ज़ाते परवरदिगार ने उसके जवाब में कहो वल्लाहु अहद हुआ, यानी हुआ कहना इस बात की दलील है कि इंसानी उकूल से बाला है, इंसानी इदराकात से बाला जात का नाम है हुआ। और इससे ये इस बात का भी पता चलता है इंसान की महदूदियत, लिमिटेशन ऑफ इंसान, इंसान कितना महदूद है कि उस जात को नहीं समझ सकते। इसीलिए सरकार ने फरमाया अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे या अली तेरे, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तेरे और अल्लाह के, तुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और मेरे। हकीकत में ज़ात परवरदिगार की अगर तारीफ की जाए तो इम्पॉसिबल है कि वो हमारे समझ के अंदर आ जाए, हमारे उकूल, हमारे अक्ल, हमारी रीजनिंग के लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस बात की तरफ इशारा है, हुआ कह दो रसूल उल, यानी कह दो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ यानी उसकी ज़ात बहुत बुलंद है, इतनी बुलंद है कि ना तुम हवा से देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना चख सकते हो, यानी तुम्हारे हवास के न सिर्फ हवास बल्कि माकूलात से भी बाधा। इसीलिए ज़ाते परवरदिगार ने सूरह फुसिलत की इस आयत में फरमाया सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हम बहुत जल्द यूनिवर्स में, दुनिया में और खुद तुम्हारे नफ्सों में क्या बताएंगे, आयात को बताएंगे, निशानियों को बताएंगे, साइंस को बताएंगे, किस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, हत्ता यतबैना लहुम अन्नहुल हक, यानी इतना वाज़े होगा, तिबियान होगा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा कि ये रियलिटी हकीकत में। जितनी साइंस तरक्की करेगी, अगर सिंसियरली तरक्की करेंगे तो वजूद की के मबदा को तलाश करना चाहेंगे, चुनांचे इंसान की फितरत में है कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या थी, इसकी तलाश कर रहा है, डिगिंग हो रही है, आर्कियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटीज़ में, और देख रहे हैं क्या देख रहा है इंसान, देखना चाह रहा है कि मबदा क्या है, इसका बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स क्या है। कुरान कह रहा है कि बहुत जल्द ये बातें वाजे हो जाएंगी, इतनी वाजे हो जाएंगी कि मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात है, यानी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स जो है यूं ही नहीं पैदा हो गई, बिग बैंग नहीं हो गई, बल्कि इसका पैदा करने वाला मौजूद। अगर इन आयात को सामने रखेंगे तो बात जो है वाज़े हो जाएगी। एक हदीस में इमाम अल-आमिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये किस्सा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला ने जंग बद्र में हज़रत खिज़र को अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र जो गायब हैं उनको देखा, और मौला चाह मौला ने कहा खिजर से कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिससे मैं कल की जंग में काम आ सकूँ। हज़रत खिजर ने यह तालीम दी, याहू या मन लाहू इल्लाहू, आए वो कोई नहीं सिवाय उसके, याहू या मन लाहू इल्लाहू, बहुत खूबसूरत है, आए वो यानी याहू या मन लाहू, उसके अलावा कोई नहीं। जब सुबह हुई तो ये किस्सा मौला ने ख्वाब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली उल्लिमतल अस्माउल इस्मुल आजम, उल्लिमता इस्मुल आजम, अल्लाह अकबर, या अली तुम्हें जो है इसमें आज़म बताया गया है। ये लोगों को बहुत तलाश है इसमें आज़म क्या है। हकीकत इसमें आज़म यही है कि इंसान उस नतीजे तक पहुंच जाए कुछ भी नहीं है सिवाय उसके, हकीकत वही है, इसमें आज़म ही यही है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है तो ये वजूद को अपना ख़त्म करे, अगर दुनिया तरक्की करना चाहती है सबको ख़त्म करे, कुछ है तो सिर्फ उसके साथ है। याहू या मन लाहू इल्लाहू, वो ज़ात है कि उसकी ना उसकी तरफ हर इंसान जाता है, हर वजूद जाता है, और कोई नहीं है सिवाय उस ज़ात के। अम्मार यासिर सिफीन में, अम्मार यासिर सिफ जंग सिफीन में मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़बान से ये सुना कि ये इस्म आज़म खुदा, खुद अल्लाह का इस्म आज़म है और सुतून तौहीद है। ये हुआ जो है कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ हम लोग समझ रहे हैं हुआ हुआ ये है ना, ये वो जात यामन हो, यामन हुआ, हु के माने यामन हुआ, यामन ला हुआ इल्ला हुआ, कोई नहीं सिवा उस जात। अल्लाह की जात, इस सिलसिले में हमने तफसील से गुफ्तगू की है, इसके रूट वर्ड्स क्या हैं वगैरह, जब हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तफसील को आपके सामने पेश किया। और इसमें जलालय परवदिगार है, इसमें खास है, प्रोनाउन है अल्लाह की जात का, जिसमें तमाम सिफात सुमाए हुए हैं। अल्लाह के दूसरे असमा लेने से, 99 सिफात के नाम लेने से, एक नाम लेंगे तो दूसरा नाम उसमें शामिल नहीं होगा। अगर हमने रहमान कहा, रहीम नहीं है, हमने रहीम कहा, सत्तार नहीं है, अगर हमने सत्तार कहा, गफ्फार नहीं है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के लिए खूबसूरत नाम है, पुकारो उसी के नाम से। अगर हम अल्लाह के सिफात को पुकारेंगे तो एक एक सिफत आएगी, लेकिन जब अल्लाह कहेंगे तमाम सिफात है परवरदिगार उसमें समय जाएंगे। तो खसूसियत लफ्ज अल्लाह, इसीलिए इस अल्लाह से मुतल्लिक बहुत सी आता रिवायतें हैं। इसका रूट वर्ड जो है वल्लहू, यानी जाते परवदिगार की वो जात है जो इंसान को मुतहय्यिर करती है। लफ्ज अल्लाह का जो रूट है, वहां से जहां इंसान तहय्युर में आ जाता है, बहुत मुश्किल होता है, हर चीज को, हर चीज को किसी न किसी ने वजूद में लाया। तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन, बहुत से लोग खालिक हैं, हो सकता है खालिक है, लेकिन अहसन खालिक है, सब चीजों को वजूद लाने वाला, सबका वजूद में लाने वाला ज़ात परवरदिगार है। फौरन जहन में आया उसका वजूद में लाने वाला कहाँ है ना, तो वहां से उस हदूद तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हदीस में मासूम ने फरमाया, तफक्करू फी खल्क, तफक्करू फी खल्किल्लाह, अल्लाह की जात में फिक्र करो, यानी गौर व फिक्र करना। तो किसकी जात में फिक्र करो, अल्लाह के मखलूक में फिक्र करना है कि अल्लाह की जात। मौला अमीर मोमिन की एक हदीस और एक है, अल्लाह मानाहुल माबूद अल्लदी यअलहू फीहिल खल्क, यानी जाते परवरदिगार वो माबूद है जिसकी तरफ सारी मखलूक मुतहय्यिर है या पहुंचती है। वो युअलहू इलैह, या उसकी तरफ मुतवज्जे रहती है। वल्लाहु अल मस्तूर अन दरकिल अबसार, ज़ाते परवरदिगार की ज़ात मस्तूर है, छुपी हुई है आंखों से। ला तुदरिकुल अबसार, कुरान की भी आयत है कि उसको आंखों से देख नहीं सकते। ये जो सलफी, ये वहाबी हजरत, उनका अकीदा कुरान के इस सूरे के खिलाफ है। दूसरों को बड़ी शिर्क की दावत देते हैं। इसको देखें, कुरान का वाज़े, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, अगर इसको वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं। लेकिन उनके पास अकीदा है कि सरकार कुरान के जाहिरी जो आयतें उनको लेकर के, वजा रब वल मलक सफन सफा, ज़ाते परवरदिगार आएगा कुर्सी में सवार वगैरह, लोग जाके शेकन करेंगे। कुरान कहते लन तरानी या मूसा, मुझे कोई नहीं देख सके। मौला भी यहाँ फरमा रहे हैं, वल्लाहु अल मस्तूर अन दरकिल अबसार, ज़ाते परवरदिगार मस्तूर है आंखों से देखने, अल महजूब अनिल अवहाम वल खतरात, महजूब है यानी नजर नहीं आता, हिजाब में है, पर्दे हैं, सबसे बड़े पर्दे हमारी मादी पर्दे हैं, उस तक वो पर्दे हट नहीं सकते, इम्कान ही नहीं है। मस्तूर महजूब है, हमारे अवहाम पर पर्दे हैं, और हमारे खतरात, खतरात यानी ख्यालात भी उस तक समझ नहीं सकते, उस जात तक नहीं समझ सकते। और बाज ने ये कहा है कि अल्लाह बरवजन ने, यानी जाते परवरदिगार, इलाह के माने ये हैं कि जिसकी इबादत की जाती है, अल इलाह से है। बहरहाल ये माने भी बहुत खूबसूरत हैं, इन तमाम की तरफ बाजगश्त होती है, जाते परवरदिगार लफ्ज अल्लाह, जमीय सिफात परवरदिगार, तमाम एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुबहाना तआला को एम्बेडेड करता है, उसमें रखते हैं ज़ाते परवरदिगार। अल्लाह की लफ्ज अल्लाह में सब कुछ मौजूद है, और लफ्ज अल्लाह शुरू हुआ इलाह से, इन माबूद काबिले सजदा अगर कोई ज़ात है, ज़ाते। नाम लफ्ज़ अल्लाह जो है हजार बार से ज्यादा कुरान में तकरार हुआ है, और इसकी तफसीर कितनी ही करते चले जाएं फिर भी कमी है। बाज़ लोग इस ज़ात के मुताल्लिक यानी लफ्ज़ अल्लाह को समझने के लिए फलसफे में जिन्स व फ़स्ल व माहियत व वजूद, ये चार चीज़ें जो बहुत अहमियत, जिन्स व फ़स्ल माहियत वजूद, अगर मैं इसको जान जाऊंगा तो तफसील में आप लोग भी जो है गीज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसीलिए हम बिल्कुल सीधे सीधे बात बताएं कि लफ्ज़ हुआ जो है वो ज़ात है जो इस ना जिन्स में आ सकता है, ना फ़स्ल में है, ना माहियत में है, ना वजूद, और इशारा है वाहिद की तरफ, उस जात की तरफ, यानी कसरात खारजिया जात की तरफ। हुआ के माने वाहिद, जमीर वाहिद गायब, वाहिद के माने कुरान में अहद भी है, वाहिद भी है, अहद एक ही जगह इस्तेमाल है, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद का तर्जुमा है यकता, यकता का दुखता नहीं होता, एक का दो तीन चार पांच है, लेकिन यकता का दुखता ऐसा नहीं होता। यकता बहुत अच्छा तर्जुमा है उर्दू में, और फारसी में भी यकता व यगाना कोई उसके मुकाबले में नहीं है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहद के बारे में फरमाते हैं कि वो यगाना है, और वाहिद एक मफहूम, ऐसा मफहूम रखता है कि जिससे मुनफरद इनफरादियत मालूम होती है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं है, जिसका कोई शबीह नहीं है, और तौहीद यही है कि उसकी यगानगी, उसकी यकताई, उसकी वहदत, उसकी इनफरादियत का अकीदा रखें। और इसी हदीस के ज़ायल में हम पढ़ते हैं कि वाहिद अदद से नहीं है, वाहिद जब कहते हैं वन उसके बाद टू, बल्कि वाहिद बुनियाद आदाद है, यानी अदद हकीकत में शुरू होता है दो तीन चार पांच है, समझिए अच्छी तरह से, खुद वाहिद जो है बुनियाद है, वाहिद किए कहे बगैर आप दो नहीं कह सकते, और दो जब कहेंगे तो जमा शुरू हो गया। तो इसमें इशारा है कि अल्लाह की तरफ अगर वो वाहिद ना होता तो दूसरी चीजें होती ही नहीं, के लिए आदत जितने भी शुरू होते हैं दो के बाद शुरू, और इंसान के इदराकात, इंसान के तवाहमात, खतरात, ख्यालात, तसव्वुरात से बईद है वो ज़ात, और उसकी ज़ात कैफियत में भी नहीं आ सकती, कैसे कैफ उसको बताएं, ना है उसका कोई रंग है, ना उसकी कोई बो है, ना कोई उसका हजम है। और कुरान मजीद में वाहिद व अहद दोनों भी इस्तेमाल हो, तौहीद सदूक में है कि जंग जमल में, बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए बहुत अच्छी खूबसूरत, जंग जमल अनफॉर्चुनेट, जंगे जमाल में एक अरब आया और आकर के मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अगर अल्लाह वाहिद है तो क्या माने, क्या मौला जो प्लान कर रहे हैं जमाल में, कौन जाना चाहिए, किस तरह से जमाल को, जंग भी जब भी होती है तो उसकी प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के बीच में जो है एक अरब आया, वो सवाल करता है ये अली ये वाहिद तो तुम समझा, आप समझाइए वाहिद क्या, अलैहिस्सलाम एक मतबा, सारे जितने भी साथियां थे चारों तरफ उनकी कैपेसिटी तो एक नहीं होती ना, सब टूट पड़े बेचारे पर, यहाँ पर जंग है, जंग का मैदान में कारजार तैयार हो रहा है, तुम वाहिद की तफसीर के चक्कर में लगे हुए। मौला ने फरमाया कि छोड़ो दो, ये सवाल कर रहा है, यही है इल्म, अगर किसी आलिम के पास जाए, आलिम सवाल करे, वो गुस्से में आ जाए तो समझ जाइए कि गुस्से में नहीं आना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, मालूम नहीं कि हम कंप्यूटर थोड़ी हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें, लोग आग सवाल करते, नहीं मालूम, नहीं मालूम करके बताएंगे। लाजिमी नहीं है कि हर चीज़ का आलिम के माने, चंद चीज़ें जानते, कुछ भी नहीं जानते हकीकत में, कुछ भी नहीं, लेकिन मौला अमीर मोमिन का इसमें इसके पीछे मत टूटो, सवाल इसने किया मैं जवाब दूंगा। मौला ने अजीब नुक्ता बयान फरमाया, ये जो जंग हो रही है इसी तौहीद के लिए हो रही है, अल्लाह अकबर, समझिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से मौला अमीर मोमिन फरमा रहे हैं कि जंग तो मालूम हुआ, जितनी भी जंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, 86 जंगे हैं, काहे के लिए है, ये बुराओं से तौहीद के लिए, जुहूर तौहीद के लिए है, तो जंग वही जंग है जिसमें तौहीद जिंदा हो, ना कि जवा जिंदा हो, जैसे आज आईएसआईएस चल रही है, हुकूमत इस्लामी बना रहे हैं, जिस हुकूमत के सिलसिले में, जिसकी खिलाफत के सिलसिले में खुद है तमाम मकातिब इस्लामी कह रहे हैं कि नहीं। बहरहाल वो मौजूद हमें जाना था। मौला मिल ममिन का नुकता बहुत अच्छी तरह से समझिए कि मौला ने फरमाया इसको छोड़ दो, इसके हाल पे ये वाहिद से मुतालिक सवाल कर रहा है, जवाब मैं ही दूंगा। और जो सलूनी सलूनी कबलन तफ्तदूनी कहता है अलैहि अब्दुलसलातुवस्सलाम रूही वारवाहुना लहुल फिदा, हमारी हजारों जाने उस जान पर कुर्बान है मौला अली की जात। मौला इससे हम लोगों को तरबियत मिलती है कि किसी भी हाल में साहिल के सवाल का जवाब देना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मालूम करके दीजिए, दबाइए नहीं, मिटाइए नहीं। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जिसमें बाकायदा कहा जाता है हमसे सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं जिसके माने कि नस्ल में खराबी। सवाल जो है मौला अमीर ममिन की भला ऐसे मुतालिक लोग सवाल करें परेशान हो जाते, नहीं भाई अल्लाह की ज़ात से मुतालिक सवाल कीजिए। यही तो खूबसूरती है हमारे दीन इस्लाम की, और दीन इस्लाम है खुसन मकतब अहले बैत की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि सवालों से घबराएं। जवाब मौला ने कहा कि छोड़ दो उसको, मैं जवाब दूंगा। मौला ने अमीर ममिन अलैहिस्सलाम ने वाहिद की तफसीर की, देखिए बहुत अच्छी तरह से मौला ने फरमाया तूने जो सवाल किया है इसके वाहिद के चार माने हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिए। और इसी के साथ हमको जो है लफ्ज वाहिद पर इतनी गहराई से अगर कोई बयान कर सकता है तो वही बयान कर सकता है जो इल्म लदुन्नी रखता हो, कसबी इल्म रखने वाला नहीं कर सकता। मौला ने फरमाया ए राबी तूने जो सवाल किए वाहिद से मुताल, इसके चार माने हो सकते हैं, दो माने अल्लाह के लिए सही हैं, दो माने अल्लाह के लिए गलत हैं। जो दो माने अल्लाह के लिए सही नहीं है वो ये है कि अल्लाह वहदत आददी नहीं रखता, बहुत अच्छी तरह से समझिए, यानी अल्लाह को जब हम वाहिद कहते हैं अहद कहते हैं आदत के एतबार से नहीं है, यूनिकनेस के एतबार से है, उसकी यकताई के एतबार से है। तो वो दो ता नहीं है, दो नहीं है, इसीलिए वो आदत में नहीं है, तो एक माना चले गए। बड़ा ज़ाते परवरदिगार के लिए दो दूसरा तसव्वुर ही नहीं कर सकते। लक़द छु कहां से काम होना ने मौलाना, देखिए सूरह मायदा और आयत नंबर 73, लकद कफर अल्लदीन कालू इन अल्लाह सालिसु सलासा, ये लोग नॉन मुस्लिम ने गलत कहा जिन्होंने कहा कि वन इन थ्री, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा जो मसाला जो है थ्री इन वन, गॉड होली गोस्ट एंड सन। कुरान कहते नॉन मुस्लिम गलत कह रहे हैं, इसलिए कि वो वाहिद अददी हो जाएगा, यानी वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, ऐसा नहीं है। दूसरा जो वाहिद के लिए खुदा के लिए जात के लिए खुदा की जात के लिए रवा नहीं है, वाहिद नवई है, यानी वाहिद नवई है, मसलन ये घोड़ा उस घोड़े जैसा, ये इंसान उस इंसान जैसा, देखिए बहुत अच्छी तरह से ये उस जैसा, तो अल्लाह की जात के लिए नहीं कह सकते ये उस जैसा। ये दोनों वाहिद अददी वाहिद नवई से अल्लाह की जात बरी है। इंशाल्लाह उसके बाद जो है मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा ताकि लोग जो हैं समझने वाले समझें। जो दो माना जो मौला के मौला ने फरमाए वाहिद के चार माने, दो माने सही हैं दो माने गलत, दो गलत हैं ये दो माने, वाहिद अददी नहीं है, नंबर वाइज वाहिद नहीं है, वाहिद नौई नहीं है, लाइकनेस ऑफ अल्लाह नहीं है। जो खुदा के लिए वाहिद साबित होता वो ये है कि अल्लाह ऐसा वाहिद कि उसके बराबर कोई नहीं है, वाहदत यूनिक रहे। और दूसरा माना जो वाहिद अहदुल माना है, यानी वो जात तकसीम पजीर नहीं है, उसकी जात को तकसीम नहीं कर सकते, मसलन इंसान है, इंसान अकेला है, पत्ता अकेला, एक पत्ता कह सकते हैं, एक पत्थर कह सकते हैं, लेकिन अज्जाए तरकीबियां हैं उसमें इंसान के साथ में, आंख है, जबान है, कान है वगैरह वगैरह, ये सब मिलाकर के मुरक्कब बना है एक, ऐसा मुरक्कब ज़ाते परवरदिगार नहीं, तो वाहिद अददी नहीं है, वाहिद नवी नहीं है। जो चीज़ अल्लाह की ज़ात में साबित होती है वो उसके मुकाबिल में ऐसा वाहिद है कोई उसका शबीह नहीं है। दूसरा है कि उसकी ज़ात तकसीम पजीर नहीं है। आई बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मर्सीफुल। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सूरत तौहीद, सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल सूरा टू डिस्क्राइब। It is very difficult to even understand and say describe description of that word, Allah subhanahu wa ta'ala. But people were asking our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, describe us, look at that, these are our gods, these idols of our God. They were pointing towards God, these are Father, Ha'ulai, these are the our God. Then answer came, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul Wallahu Ahad. I begin in the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Part of all the surahs except the Surah Tawbah. Say, Qul. Qul itself is a commandal phrase. Commandal phrase meaning, so everyone has to convey the message. Make it manifest to everyone. Qul. What we need to manifest? Huwa. Huwa also has a beauty. Is a pronoun, singular pronoun, and also third person. So, Huwa means that, he. When we say he, the person is not here. So that Huwa has itself is a beauty. That beauty is, why we say to Allah subhanahu wa ta'ala Huwa? Because we cannot perceive him, we cannot comprehend his existence. That's why he is Huwa. Allah qul huwa Allahu ahad. Then the meaning of ahad. In the Holy Quran, we do have wahid also many times. And in this particular surah, we have ahad. Meaning of ahad is unique. None like him. In the battle of, I was saying in Urdu, also I am repeating this in English so that everybody listens and also comprehends this. May Allah give us inspiration to do so. In the battle of Jamal, an Arab came to Mawla Amir al-Mu'mineen, and Mawla Amir al-Mu'mineen was planning a battle, how to fight, etc. Who should be the battlefield, the first, usually what happens in the battle. Midst of this, a person comes, Wa Ali describe Wahid. Alayhi Abdul Salatu Wasalam. Let me know, I want to know Wahid. The companion of Mawla Amir al-Mu'mineen, those who were surrounding him, everyone jump on him. Is it a time to ask this question? Mawla Amir al-Mu'mineen said, stop it. Take it easy, man. He is asking me question, why you are? Mawla Ali alayhi salatu wasalam said only one sentence, is very important. We are fighting for this tawheed. This is a very beautiful thing. That's why hub lillah, bughd lillah. If we love, it should be love because of Allah's love. If may God forbid, if we dislike someone, that's also because Allah dislikes someone. That's why we have to dislike. The hub of war is only for Allah subhanahu wa ta'ala. So here also, the wars of, when we see battles of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 86 minor major wars, all of them for what? For tathbeet of tawheed. For the manifestation of one ideology, that is, there is none to worship but Allah subhanahu wa ta'ala. That is the purpose, if we understand clearly. It's a very, very beautiful. Mawla Ali says, leave him alone. We are fighting for this subject of Tawheed Wahid. That means that Wilaya also, that Risala also Tawheed, that Wilaya also Tawheed. We should not be stuck in the midst. Everything has to go written, Inna Lillahi wa Inna Ilahi. But then Imam alayhi salatu wasalam says, when we say Wahid, when we say one, it can have four meanings. Two are not right for Allah, two are right for Allah. then meaning which is not right for Allah subhanahu wa ta'ala is, when we say one, there is a two. He is not one in counting. This is wahid adadi. You cannot count him as a one. Once we say one, there is a two, three, four, five. No, that is not wahid adadi. One in here is unique. Number two, wahid and naw'i. For example, this alim is one of those, one of those. This horse is one of those horse. When we describe someone, we compare someone. In the case of Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot compare. Laysa kamithli shay, lam yakul lahu kufuwan ahad. So these two meanings have gone. What are two meanings are right? That is, Maulana Minun says, when we say wahid, wahid is so unique, none can be given none is like of him. Nothing can compare him. He is unique. Allah subhanahu wa ta'ala is unique. And the other meaning is ahadul ma'ana. You know, a human being cannot comprehend, cannot perceive our limitation. We are limited. We are limited being. Yeah. Allah is unlimited. That's why Imam Sadiq says, tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi Allah. Go on researching about the universe, about autumn, everything is very good. As long as you are pondering about the creation is better. But don't start pondering about the creator. Because you are limited, and that is unlimited being. And this also becomes very clear that Allah subhanahu wa ta'ala is unique, and Allah cannot be compared with anything else. And the beauty is that this is in the Holy Quran. And those who proclaiming Muslims themselves, there, those who say everything, oh, shirk, 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 they give long list of shirk. For example, Salafis, these Wahhabis, they believe God has body. That wahid is denying all. Lam yakul lahu kufuwan. Why they do? Because of some of the ayah they could not interpret. That's why they had to go to this rightful people to gain the knowledge that rightful people is. Yes, alunaka anil ahilla. People ask about the crescent. Kul hiya al-mawaqit linnas. This moon business is the timings. Even the time of weekly time has been derived because moon has four cycles. First and second and third. That's why 28 days is the age of the moon. It has been divided into four. That's why we have 7 days. A week, it has been derived from the moon. Then Quran says, "Atul buyut min abwabiha," come to the houses through the door. What is this simple? Everyone has to go through the door. Why this ayat is saying is not through the door, it is something else. Knowledge has its own door. That's what Prophet says, sallallahu alaihi wasallam, "Ana madinatul ilm wa aliyun babu." I am the city of knowledge. If you want knowledge, you have to come from the door. Don't jump from the others. That's why the even Tawheed, monotheism of Allah subhanahu wa ta'ala, if we don't get from through proper channel, we don't get God, we don't get Allah subhanahu wa ta'ala right. And the mushrikeen, they are saying others to mushrikeen. Even to extent, if an alim, a scholar, who is leading the prayer and Salafi's fatwa. They have to ask him, if he doesn't believe God, we'll meet God in person on the day of judgment, we should not follow the prayer. That's their aqidah. Here, Allah subhanahu wa ta'ala is denying from his own wording by saying, Allahu ahad qul. Qul, say, Allah is one. No, none can be like him. Qul huwallahu ahad. Say, is conveying, say, make it clear to others, manifest to others, everyone, each and everyone. If you believe, go on to others. That belief, pull is commander phrase. Everyone has to say pull. I cannot say akul Allahu ahad. I am saying Allah is. No, I have to also say pull. That is the reason in the ahadith it has been encouraged. At least one in salat, one rakat, you recite this surah after Surah Al-Ham. So this is the iltizam of the ulama of greater India and Pakistan, our Urdu speaking, the ulama, they always they recite. And that itself, this surah is denying the belief in tathleeth of Allah subhanahu wa ta'ala, one in three, Trinity. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ. God is one of the three. This is the denial. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah is أحد. Allah is unique. You cannot divide him in any way. Division is not there. And that أحد also is not in number. Because once we say أحد, you have to say, once you say one, you have to say two. No. That one is not of the two. No. If we believe in that, that means we have parted Allah subhanahu wa ta'ala. We made it just like a body. And our body is wahid, one body. But one body has ajza. There are so many parts equal to one body. That one body has so many juz, so many parts. In the case of Allah subhanahu wa ta'ala, that kind of body is not there. Because once it is body, it has ajza, it has parts. That is the denial. Allahu ahad. The purity, the ikhlas and tawheed can only become through Ahlul Bayt. That's why Imam Ali salatu wasalam, Abbaluddin ma'rifatuhu. First in religion is knowing Allah subhanahu. That means we have to know Allah subhanahu. Ma'rifat of Allah. Once we know Allah subhanahu wa ta'ala, Awwaluddin ma'rifatuhu, kamalu ma'rifatihi tasdeeku bih. Highest degree of ma'rifat, deep knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, you reach to certainty. What do you mean? And a knowledge of certainty means where there should not be any doubt. That's why we have to say, Ashhadu an la ilaha illallah. I stand witness, there is no God. I am witnessing. Did I see him? I didn't see him. So what is this witness? Is it the eyes? Is it the ears? Did we hear him? No. Did we touch him? No. Can we touch him? No. Can we see him? No. Lan tarani ya Musa. You will not going to see me, O Musa. This is the Quran, not hadith. This much clear guidance from the Quran, still people believe. Even Muslims, they believe God. God can be seen. Quran says, Lan tarani, you cannot. Those who know Arabic grammar, this lane, nafi al-abad. You cannot see O Musa, not in this world, not in the akhirah. Because here he doesn't have mithl, laythaka mithlihi shay. There is none like him. None like him. Nothing is like him. Once we say like him, that means there is no ma'rifah. So Imam Ali says, Awwaluddin ma'rifatuhu. The first thing in religion, the first step in religion is knowing Allah. And kamal of ma'rifat, highest elevation of ma'rifat, deep knowledge in Allah subhanahu wa ta'ala is what? Tasdeeq, we reach to it. That's why Imam Ali says, لَوْ كُشِفَ الْغِطَى لَمَّزْدَتُ يَقِينًا. I reached to so certain, everything I could see, even the curtains have been removed, there shall not be any increase in my yaqeen, in my certainty. So one has to reach to that point. And that's why I don't say where, because there is no where, everywhere he is. Don't ask when, there is no when, because beginning is he is awwal. When we say awwal, what kind of awwal he is? Al-awwal, bila awwal. When we say awwal, the first, think comes, something was there, then first. No. Al-awwal, bila awwalin. He is awwal, there was no awwal before. He is first, there was nothing was first. Eternity. He shall be last, wal-akhir, bila akhirin. He shall not be So that is the meaning of Ahad. So beautiful, isn't it? So Quran in this surah is describing one after the other. All say, convey the message, manifest the matter of Tawheed. Huwa, huwa is itself is the pronoun for the third person that itself is describing. It is very difficult for human beings to comprehend. That's why we say he. What is he? Allah. He is Allah. The word Allah, we did explain in the Surah Al-Hamd when we were talking about Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, there are 99 attributes have been described in the Holy Quran. Allah is Rahman, Allah is Sattar, Allah is Ghaffar. Allah has 99 names. When we say one name of Allah subhanahu wa ta'ala, we are not saying the other name. But when we say Allah, we are saying all the names. For example, if I say Allah, then I say Rahman, I'm not saying Rahim. When I say Rahim, I'm not saying Sattar. I'm saying Sattar, I'm not saying Ghaffar. By picking one attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, one attribute of Allah, I am not picking the Zaat of Allah subhanahu wa ta'ala. When we say Allah, that means I am saying all the attributes of Allah. Jami'a sifat. That's the beauty. That's why the word Allah cannot be translated. Some of the scholars, when they read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I begin in the name of God. Why we need to please someone? No. Allah is not God. The Allah, God is one of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Could be sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Not desire. That's why call and manifest, make it clear. That clear is, He is so above our perspectives, our comprehension, huwa, and that is Allah. That Allah, it has all the sifat, all the attributes. He is Rahman, He is Kareem, He is Sattar. When I will say Allah, He say all the attributes, possible attributes, 99. And if you go into the Dua-e Jaushan-e Kabir, 1,000 attributes. That we cannot. That word Allah cannot be translated. Allah is what? Ahad. Ahad, meaning of Ahad, is unique. As Maulana Imam Mirza explained, one of the four meanings, two are not with Allah, and one is with Allah subhanahu wa ta'ala. The two is with Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah cannot be comprehended, Ahad is unique, then that uniqueness has answer. Allahu samad. The word Samad, inshallah, we're going to describe in next time when we come to the tafsir dabs and then classes, inshallah, we learn. Samad means a being who is independent. And every dependent being has to depend upon that person, that existence, that is Allah subhanahu wa ta'ala. That Ahad unique is Samad. Samad is, he is independent, everyone is dependent upon him. So everything thing has to go towards Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from where? From Allah subhanahu wa ta'ala. That Samad is explaining, it cannot be comprehended, number one. Number two, he is independent. And all the being, universe, the, all of us, we are dependent. Yahu, Yaman, Lahu, Yaman, La, Illahu. It's so beautiful. This one of the thing Imam Ali alayhi salatu wasalam says, I learned from Khidr alayhi salatu wasalam in the battle of Badr. I saw the dream, and Khidr has taught us tomorrow in the war, you say, Yahu, Yaman, Lahu, Illahu. Oh, he. There is nothing but he. If we can reach to that, so our pride, our everything, me, everything goes, it becomes purer. Even I am talking today or talking before, in the future, everything is from Allah subhanahu wa ta'ala. If that tawhid comes, the problem of the society is going to go away. That is the meaning of ikhlas, sincerity, purity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.